ओम शांति। आप सभी आज कल से बहुत सुंदर अनुभूतियों में खोए हुए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी किए होंगे। शायद आपकी लगन देखकर प्रकृति भी प्रसन्न है और गणेश जी का पर्व चल रहा है, तो हम सभी गणेश हैं या नहीं? हम सभी गणेश हैं। किस बात से हम गणेश हैं? गणेश की एक विशेषता कहानियों में आती है, वो विशेषता हम पे लागू होती है, तो उस बात से हम गणेश निश्चित रूप से हैं। तो कौन सी बात है वो? जैसे बाबा बोलते हैं ना, हम जो कर्म करते हैं वही गायन के रूप में भक्ति मार्ग में करते हैं, राइट? हम जो भी बाबा की शिक्षाओं से चलते हैं या बाबा की प्यार में कुछ भी हम करते हैं उसका गायन भक्ति मार्ग में करते हैं। तो ऐसी एक बात है जो गणेश जी से हम पे लागू होता है, हाँ? हाँ, एक माँ बाप ही मेरा संसार है। तो कहानी में आता है ना, नारद जी एक आम लेके आए, जो दुनिया के चक्कर लगाएगा पहला पूरा करेगा उसको ये आम मिलेगा। तो कार्तिकेयन जी तो अपना मोर को लेके उड़ गए, लेकिन गणेश जी ने सोचा पूरा पालनहार मेरा माता पिता ही हैं, तो उनको ही घूम लूं, तो पूरा दुनिया को घूम लिया। तो ऐसे हम सभी का एक बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, ऐसा है? और कुछ मिलना बाकी है? नहीं। तो ब्राह्मण जीवन में खासकर बट्टी में जब आते हैं, कुछ बातें जो हम जो करते हैं उसको थोड़ा सा अलग प्रकार से हम करें तो हमारा जीवन दिव्यता की ओर बढ़ती है। बहुत सिंपल सी बातें हैं जो दादियों के अनुभवों से या दादियों की शिक्षाओं से बाबा की मुरलियों से हमको मिलता है, लेकिन हम सोचते हैं ये छोटी सी बात है ना, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो छोटी बात बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे भी करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। वो कुछ बातें आपको सुनाना चाहूंगा, बाकी कल और परसों दो दिन हैं, तो उसको आप प्रयोग करें और गहन अनुभवों में जाएं। जो पहले 20-25 साल पहले हमारी बट्टी होती थी, जो दादियां हमको कराते थे, वो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बट्टी माना शुरू, पहला कदम मौन। जितना मौन में रहेंगे उतना आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी। जो आजकल की परिस्थितियां दुनिया में हम देखते हैं, बहुत सारा शक्तिहीन आत्माएं आते हैं डिप्रेशन के, टेंशन के, जो होपलेस, जो होप ही नहीं है, कुछ भी घटना घटी अपने अंदर ताकत नहीं उसको सामना करने का, तो बोलते हैं विल पावर। तो जो आवाज से हम व्यर्थ होता है, हम अपने आप को देखें दिन भर में कितनी बातें हम अनावश्यक बोलते हैं। बाबा तो ये कहता है ना, जहां 100 शब्द कहना है वहां 10 शब्दों में कहो। तो बड़ी दादी का एक स्लोगन था, कम बोलो धीरे बोलो और मीठा बोलो और एक सोच के बोलो और एक स्पष्ट बोलो। तो चलो, आप लौकिक में रहते हैं या कामकाज पे जाते हैं, घर पे रहते हैं, कई जगह आपको आवश्यक है बोलना, ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। लेकिन जो बाबा के घर में है, सुंदर सा वातावरण है, सुंदर सी जगह है, मैं तो आपको कहूंगा जितना हो सकता है उतना कम बोलो। जरूरी नहीं है ना, हमारा स्पार्क में सेवा करने के लिए आते हैं जो कपल्स आते हैं, उनको भी मैं कहता हूं आज से आप बाबा के बच्चे हो, एक दूसरे का ख्याल नहीं करो, इधर फ्री रहो, बाबा ख्याल करेगा। उन्होंने नाश्ता खाया, दवाई लिया, गर्म पानी लिया, छाता लेके आए, क्लास में चले साथ, नहीं, कम से कम दो दिन के लिए ट्राई करो। जैसे आपस में एक सेंटर से दो लोग आए हुए हैं या कोई एक घर के दो लोग आए हुए हैं, आपस में दो दिन के लिए छोड़ दो, मैं अकेला बाप के साथ हूं बस, उनका जो भी करना है वो करेंगे, अपना अपना करना, एकदम स्वतंत्र हो सकता है, हो सकता है केवल दो दिन के लिए। तो यहां के जो वातावरण का शक्ति आप और अच्छी तरह ले सकेंगे। और बिल्कुल सवेरे से नाश्ता पूरा होने तक बोलना नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोलना है। वैसे तो हम लोगों के लिए तीन दिन पूरा मौन बट्टियां चलती थी, लेकिन कम से कम एक भी शब्द 9 बजे तक बोलना नहीं है। और ऐसे शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक एक शब्द भी नहीं बोलना है, दो दिन के लिए, हो सकता है। तो जब मुख का मौन हो जाता है, ऐसा प्रेशर भी नहीं फील करना, अंदर से अंदरूनी खुशी होनी चाहिए। जैसे कोई गिफ्ट मिलता है तो खुशी होती है ना, पूरा दिन वो सोचते हैं आज मुझे गिफ्ट मिला, या इस कंपटीशन में मैं आगे आई, या दीदी ने हमको गिफ्ट सौगात मिला, या दीदी ने आज स्पेशल टोली खिलाई मुझे, पूरा दिन रहता है ना ऐसे अंदरूनी खुशी, आज मुझे मौन में रहना है बाबा के साथ, बस जो अंदरूनी खुशी हो, अरे यार आज बोलना नहीं है, ये मौन जबरदस्ती, मैं किसको कैसे समझाऊंगा, कहां जाना है, पूछूंगा कैसे, ये नहीं सोचना है। जो खुशी में, हां मुझे सिर्फ बाबा के साथ ही बोलना है, ठीक है। दूसरी बात, भोजन, जो हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं, एक दाना भी वेस्ट ना हो। दो दिन के लिए ट्राई कीजिए, हमारे ताली में आ गया हमको खा लेना है, छोड़ना नहीं है। एक तो ब्रह्मा भोजन है, दूसरा कोई तो 3 महीना उसके हमारे पीछे मेहनत कर रहा है ना, एक अन्न का दाना हमारे ताली पे आना है, किसी की मेहनत, 3 महीने की मेहनत, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दाल हो, चाहे अनाज हो, कोई भी चीज, 3 महीने से पहले एक भी दाना मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, खरीद नहीं सकते हैं आप। अगर कोई हमारे लिए मेहनत करे, 3 महीना उगाए फिर लेके आए, तो आप खरीद सकते हैं, तो वो भी महत्व। और दुनिया में 60% लोगों को एक वक्त का खाना मिलता है, ठीक है। जो हम भगवान के घर में आराम से हमारे ताले में ब्रह्मा भोजन बाप की याद से बनाया हुआ भोजन हमारा ताले में आ रहा है, तो हमको वेस्ट नहीं करना है। भले दो बार लीजिए, तीन बार लीजिए, लेकिन वेस्ट एक भी दाना ताली में नहीं जाए, इसका महत्व है। ठीक है, दो दिन के लिए, वैसे तो आपके जीवन भर के लिए ये चीज होनी चाहिए, आप दो दिन के लिए ट्राई करो, दो दिन मुझे एक भी दाना वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही पानी, जितना आवश्यक है आप उतना यूज करें। क्यों? हम पावन बन रहे हैं और प्रकृति को भी हम पावन कर रहे हैं, राइट? पांच तत्वों को भी पावन कर रहे हैं ना हम, हमारी योग की शक्ति से हम उसको पावन कर रहे हैं। एक तरफ हम उसको ऊंचा, उतना ऊंचा ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम वेस्ट करें, मैच होगा? तो दो दिन के लिए ये ट्राई करें, ठीक है? दूसरी बात, मुरली, जो हम मुरली सुनते हैं रोज, उतना इंपॉर्टेंट स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं, मेरे को पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए आत्मा की ताकत है, खुराक है, जो एकदम जैसे कत किसी का लेटर आता था पहले तो खोल के पढ़ने में कितना आनंद मिलता था। अगर समझो आपको कोई मिनिस्टर या मोदी जी ने फोन किया, कितना खुश हो जाएंगे, मरते दम तक वो याद रहेगा, बताएंगे मेरे को मोदी जी ने फोन किया था। अभी रोज भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आया है, उतना इंपॉर्टेंस है मेरा? सोचें, भगवान के महावाक्य मैं सुन रहा हूं और क्या क्या विचार मेरे में आ रहे हैं। सिंपल, दीदी भी परसों बोली, बहुत सारे मोबाइल बजते रहते हैं, उतना हम कौन सा बिजी हैं जो हमारा मोबाइल बजे जब भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं? भगवान से ज्यादा हम मोबाइल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? हम कितना बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं, और भगवान के सिरताज हैं हम, जो भक्ति मार्ग में कई भक्तों का हिस्ट्री हमको पता है, जो भगवान के याद में या गानों के पीछे, भक्ति के पीछे पूरा घर छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया, गांव को छोड़ दिया, खेतों को छोड़ दिया, तो भक्ति में तर गए, सुने हैं ना हिस्ट्री? तो हम उनको कुछ भी पता नहीं है, राइट? भगवान को उन्हें पता नहीं है, उनको कहां रहता है पता नहीं है, कैसे उसको याद करना है पता नहीं है, मेरा और भगवान के साथ क्या रिश्ता है वो पता नहीं है, लेकिन हमको सब कुछ पता है। तो मेरा इंपॉर्टेंस कहां गया सब कुछ जानने के बाद? तो रिसर्च में ये कहते हैं, जब बच्चा रहता है उसका हार्ट बहुत बड़ा रहता है, बेहद का रहता है, हर चीज वो दिल से करेगा, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको भी पकड़ना है तो पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है, जलाएगा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो दिल छोटा होता जाता है, तो हमारी बुद्धि बड़ी होती जाती है। सो ये दिल और दिमाग का बैलेंस, तो हम हर चीज दिमाग से सोचने लगते हैं, नहीं, दिल से सुने। दो दिन मुरली सुन के देखो कितना आनंद आएगा। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या कमरे में रख दो, मुरली के बाद जाके लेना, और जैसे मुरली पूरी हुई, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे सुना मुरली पूरी हुई, बाहर गए नाश्ते तक, वहां मुरली की कोई याद कर लो पॉइंट्स, दूसरी बातें नहीं बोलनी है। अगर दूसरी बातें बोली, मुरली का वहां ही रह गया। हमको दिन भर आप कोशिश कर लीजिए, एक भी पॉइंट याद नहीं आएगा। आज बाबा ने क्या बोला याद नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार कुछ अच्छी चीज कहते हैं, उसके तुरंत बाद दूसरा चीज नहीं कहते हैं। क्यों क्यों नहीं कहते हैं? वो मुंह में वो टेस्ट ऐसे ही रहे, बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर दूसरी चीज खाई, टेस्ट खत्म हो जाएगा। भले वो चीज पेट में है, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो जो टेस्ट, जो हमको जो आनंद मिला या संतुष्टि मिला वो टेस्ट से, वो चले जाएगी। ऐसे ही मुरली हम सुनते हैं, हमारा दिमाग में तो है, लेकिन उसकी आनंद, उसका टेस्ट अगर दूसरी बातों में जाते हैं, खत्म हो जाएगा। तो मुरली के तुरंत बाद नहीं बोलना है। दूसरा, नींद। जैसे रूम में जाते हैं, पहले हमको दादियां बोलती थी 10 बजे के बाद कोई भी कमरे में लाइट चालू नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को पढ़ना है, अपना पर्सनल लाइट रखो छोटा सा, और 10 मना बस, बातें नहीं करनी है। तो आपको संपूर्ण नींद मिलेगा, अच्छी तरह रेस्ट मिलेगा। फिर दिन में जो हम मुरली सुन समय हो या योग के समय हो, हमको नींद नहीं आएगी। हम नींद के टाइम नहीं देते शरीर को, तो शरीर अपने आप ले लेगा। सूक्ष्म मोतन के बाजू में और एक लोक है, पता है कौन सा लोक है? हाँ, दोनों के रास्ता एक ही है, सिर्फ दरवाजा अलग अलग है। हम सूक्ष्म वतन में जाने के बजाय निंद्रा के वतन में चले जाएंगे, क्योंकि शरीर को हमने दिया नहीं है रेस्ट, तो वो ले लेगा। दूसरी बात, योग में स्थिरता। जैसे मौन, मन मुख का मौन, तो मन का भी मौन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे ही स्थिरता, योग में बैठते हैं, भले एक मिनट के लिए बैठो, लेकिन हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं आधा घंटे में, जैसे 7 से 7:30 योग होता है, आधा घंटे में कुछ ना कुछ हिलते रहते हैं, कहीं सिर घुमा दिया या हाथ हिला दिया या ऐसे, किसका असल नहीं। जैसे जाकियों में देवियों को बिठाते हैं, एक एक घंटा दो दो घंटा स्थिर बैठते हैं या नहीं? अगर देवी हिलती रहेगी तो अच्छा लगेगा? दीदी नेक्स्ट टाइम बोलेगी तुमको देवी का अलंकार नहीं करना है। तो हम योग में बैठते हैं, हमारे बहुत लोग हैं, पूरा दुनिया को हम सकाश देते हैं ना, तो हम हिलते रहे, हमारा भगत सोचेंगे हमारा देवी कुछ नाराज है या देवता नाराज है, हिलते रहते हैं, क्यों हिल रहे हैं पता नहीं है। तो हम अशरीरीपन का अनुभव करना है, उसका पहला नियम है शरीर को छोड़ना। अगर आप एक उंगली भी हिलाएंगे तो मेरा कॉन्शियस तो है ना, अशरीरी तो हुए नहीं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं याद की फांसी। क्यों बोलते हैं? फांसी लगाया हुआ व्यक्ति हिलेगा, कुजालेगा, कहीं कुजली हो रहा है? नहीं। तो ऐसे हम भी प्रैक्टिस करते हैं, कई बार हम नीचे बैठते हैं जो नस खींचने लगता है कई बार, तो हम बताते हैं अभी नहीं, आधा घंटा मुझे योग करना है, उसके बाद तुम खींचो। कहीं कुजली होती है या कुछ कुछ भी नहीं रहता है, कहीं काटने जैसा लगता है, तो फील करते हैं नहीं, मैं इस जगह से अशरीरी हूं। हाथ में या पांव में कुजली होने का हो रहा है, आधा घंटे के लिए मैं इससे परे हूं। हम अपने आप को समझाने तो तुरंत विद इन ए सेकेंड्स वो ठीक हो जाता है। आप प्रयोग करके देखना। तो अति आवश्यक, बाबा कोई भी मुरली में नहीं बोलता है आप स्थिर बैठना, हिलना डुलना नहीं, कोई भी पोस्चर में बैठो बोलते हैं। लेकिन दादियां हमको, खास करके रतन मोहिनी दादी हमेशा सुनाती थी पहले बट्टियां, वो लोग रात भर भी बैठते थे, पलक भी झपकाते नहीं थे, ऐसा स्थिर बैठते थे बोलते हैं। तो योग में स्थिरता, भले आधे घंटे के बाद आप हिलो डुलो फिर कंटिन्यू करो, ये प्रैक्टिस आवश्यक है, नहीं तो शरीर के बांध से परे हुए ही नहीं। ठीक है, दो दिन के लिए जब भी आप योग में बैठते हैं कम से कम आधा घंटा ट्राई करो, मेरे को हिलना डुलना नहीं, जैसे शरीर को छोड़ दिया हूं, इस शरीर से मैं अलग हो गया हूं, फिर देखना बहुत सुंदर अनुभव होंगे। कभी भी योग के बाद तुरंत आवाज में नहीं आने चाहिए। ये बड़ी दादी प्रकाशमणि हमको ध्यान खिंचवाती थी, जो हम मेहनत की आधा घंटा या एक घंटा, वो अनुभव पाने के लिए, आत्मा की या परमात्मा की या शांति की या सुख की, उस अनुभूति से नीचे आने के लिए भी आधा घंटा लगना चाहिए कम से कम। तुरंत आवाज में आए, जैसे टेस्ट चला जाएगा वो ताकत भी चली जाएगी, तो हमारी ताकत यहां ही रह जाएगा, हमारे कर्म इंद्रियों में वो ताकत गई नहीं, योग की ताकत गई नहीं। जो हम उसको यूज करेंगे तभी ताकत आएगी ना, जैसे बैटरी पावरफुल है, आपको उसको निकाल के रख दीजिए, कोई भी चीज चलेगी, घड़ी चलेगी, उसको डालेंगे उसका बैटरी का ताकत मशीनरी में जाएगा तो घड़ी हिलेगी ना। ऐसे ही हमने स्थिर रह के आत्मा में ताकत लिया, फिर उसको इंद्रियों में यूज करो, चलना, जैसे फरिश्तेपन के अनुभव किया आधा घंटा, उठते ही नॉर्मल हो गए, भोजन पे जाना है, खाने पे क्या रहेगा, गाड़ी बुक करनी है, तो फरिश्ता वो सोचेगा, क्योंकि तुरंत सेल निकाल दिया आपने, वो शरीर में आया नहीं है। तो इसलिए उस अंगों से भी फरिश्ता जैसा, कम से कम यहां से डाइनिंग हॉल तक फरिश्ता जैसा चलो, फरिश्ता जैसा देखो, तो आंखें शक्तिशाली हो। शुभ भावना तो मन में है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो दृष्टि में नहीं लाया, दृष्टि साधारण है तो वो दृष्टि पावरफुल नहीं बनेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद चलना, हम चलते हैं तो धरती हिलने जैसा चलना नहीं चाहिए, चप्पल की आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे लौकिक में भी हमको छोटेपन में अगर आवाज आता है चलने में तो तुरंत तप्पड़ पड़ते थे, नहीं, जैसे पुराने घरों में लकड़ी का पार्टीशन होता था, अगर ऊपर चल रहे हैं नीचे आवाज आया तुरंत डांट पड़ती थी, धीरे से चलो। तो धरती को लात मार के नहीं चलना है, जैसे अगर बच्चा लात मारता है तो हम डांटते हैं उसको, अगर गोद में बच्चा पांव हिला रहा है, तो उस प्रकार से हमको चलना है धरती पर भी, तो हमारा आवाज ना हो। और चप्पल छोड़ने का भी, दादी चंद्रमणि हमेशा ये ध्यान खिंचवाती थी, आपने चप्पल कैसे छोड़ा है। 95-96 में राजऋषि हाल है ना, उधर मुरली चलते थे, तो हमको कई बार दादी ने उठा के पहले चप्पल सब लाइन पे छोड़ के आओ, ठीक छोड़ के आओ। तो कोई भी व्यक्ति अंदर आता है पहले उसको चप्पल दिखाई पड़ेगा ना, घर में भी अंदर आते हैं तो पहले चप्पल ही दिखाई पड़ेगा ना, शूरक, वो भी वही छोड़ेगा, तो उसका ध्यान जाएगा। तो उस प्रकार से जो हमारी साधारण चलन ना हो। दूसरा, बाबा के कमरा जहां भी है, सेंटर में है, इधर है, आपके घर में है, कोई मेडिटेशन रूम बनाए हैं, उस जगह में नहीं बोलना, क्योंकि उधर दूसरों को भी अनुभूतियां होती है, हम भी अनुभूति करने जाते हैं। कई कई बार बाबा के कमरे में आवाज, बाहर आवाज से बोलते रहते हैं, कमरे के अंदर सुनाई पड़ता है। तो ये ध्यान मेरी वजह से उस जगह की वाइब्रेशंस में कमी नहीं आ जाए और बढ़े। तो उसमें क्या है, शेयर्स, जैसे आप बहुत अच्छा वाइब्रेशन, भले सेंटर में हो, इधर हो, आपने योग किया, आपने शेयर खरीद लिया, उस जगह में आकर कोई भी दूसरा व्यक्ति को अनुभव हो जाता है, उसमें परसेंटेज आपको मिलेगा, कोई भी अच्छा कार्य आप करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। कई बार अमृत वेला भी बात करते हैं, अरे गर्म पानी ले लिया तुमने, फ्लास्क में भर लिया, अरे छोड़ो हम भगवान के साथ मिलने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो मोबाइल, आप कुछ भी अच्छी चीज देखते हैं, इसमें रिसर्च हुआ है, आजकल दुनिया में पॉकेट में ही पूरा दुनिया है, ठीक है। आप कुछ भी अच्छी चीज देखेंगे, तुरंत मोबाइल खोल के क्या करेंगे, क्या करेंगे, हैं? फोटो ले लेंगे, राइट। जैसे आप सोचो, हमने कुछ अच्छी सी चीज देखी, मोबाइल में फोटो खींच लिया, तो वो मोबाइल में रह गया, राइट। वो याद भी नहीं रहेगा कई बार, तो अपने मन में तो छपा नहीं। अगर कुछ परिस्थिति आई, या कुछ किसी ने बोल दिया, किसी ने डांट दिया, वो चीज कहां रखते हैं, मोबाइल में। कुछ भी ऑफिस में, घर में, किसी ने भी, बाबा के घर में भी कोई ने कुछ बोल दिया, जोर से बोल दिया, तो वो कहां रखेंगे, मन में। तो आजकल क्यों मन कमजोर बनती जा रही है, क्योंकि हर अच्छी चीज मोबाइल में हम खींच के रख रहे हैं, तो हमारा बुद्धि में फिक्स हो गया, हाँ मैंने फोटो ले लिया, संतुष्ट। जैसे कई लोग उषा बहन के साथ या बड़ों के साथ, दादियों के साथ फोटो खींचते हैं, हाँ आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन मन में ये नहीं होना चाहिए फोटो निकाल दिया खत्म, क्योंकि अच्छी चीज मन में रखा ही नहीं है, आप सोच के देखो। लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज, व्यर्थ चीज जो है, हम हमेशा में मन में रहता है, दूसरा रहता ही नहीं है। मोबाइल के पहले हर चीज हम बहुत देखते थे, अच्छा रस लेते थे, दादियों से मिलते थे या बाबा के कमरे में, आजकल बाबा के कमरे में भी सेल्फी निकालते हैं। तो मन कमजोर क्यों है, ये भी एक बात है। अच्छी चीज सारा मोबाइल में रहेगा, खराब चीज सारा मन में रहेगा, तो मन खुश कैसे रहेगा। इसलिए आज या कल में आपने बहुत सारे फोटोज खींच लिए होंगे, राइट। दो दिन, कल और परसों, नो फोटोज, आपको अच्छा लगता है, और एक मिनट अच्छी तरह उसको देखिए, मन में उसका छाप रखिए, बहुत अच्छी चीज, फूल बहुत अच्छा था, उसको और अच्छी तरह देखिए, मन में रखिए उसको, कोई सीनरी, बादल बादल आ गया, उसको देखिए, हाँ सूक्ष्मतन जैसा है, फोटो नहीं निकालना, मन में छापना उसको, तो मन में अच्छी चीज छपती जाएगी, तो दूसरा व्यर्थ जो है खत्म होता जाएगा, ठीक है। दो दिन के लिए हो सकता है, उसमें योग में भी मोबाइल बंद। अभी भी किसी का दो तीन रिंगटोन बहुत अच्छे अच्छे बज रहे थे, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहे, वो भी बज रहे हैं, बंद कीजिए ना। तो एक बजाय हम 200-300 लोग बैठे हैं, 300 लोगों का एक सेकंड का भी संकल्प चला समझो, तो वो बोझ किसके ऊपर है? हमारे ऊपर ही है ना। एक तरफ हम मेहनत कर रहे हैं, हम हल्के रहे, दूसरी तरफ एक साधारण सी चीज हमको उस ऊंची स्थिति से नीचे ले आता है। तो हम स्पार्क में एक मशीन है हमारा रिलैक्सेशन टेस्ट करने का, हम कितना रिलैक्स हैं उसको टेस्ट करने का एक मशीन है। वो टेस्ट करने बहुत सारे लोग आते हैं, करते करते अगर उनका मोबाइल बज जाता है तो स्ट्रेस का लेवल हरा जो है लाल जो है इतना फास्ट, एक ही सेकंड में जैसे मोबाइल बजा तुरंत वो लाल ज्यादा हो जाता है, हम देखते हैं। तो हमारा ध्यान कितना जाता है उसमें, किसका फोन आया, कौन बजाया, मैसेज भी आया, किसने भेजा, विथिन ए सेकेंड चालू हो जाता है। तो हमारा शक्ति को ड्रेन करने में ये फास्ट काम करता है। तो ये आवश्यक भी है, उसके बिना आजकल काम चलता नहीं है, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां उसको दूर रखो। मैं तो हमेशा अभी इसमें रिंग करते हैं, रिंग करके कान पे रखते हैं, राइट, रिंग बज रहा है या नहीं, लेकिन अभी ऐसा प्रैक्टिस करो उसको सामने रखो, क्योंकि इसका रेडिएशन भी बहुत होता है। तो उठाएगा तो उसमें टाइमिंग तो दिखाई पड़ेगा ना, हाँ काल उठ गया, फिर सुनो। तो अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रहे। दूसरी बात, दो दिन के लिए कोई भी चीज देखी तुरंत नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो गया ना, आगे नहीं करना, कुछ भी गिर गया ना, हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो दादी चंद्रमणि हमको बोलती थी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी उनको फोन करके पूछते थे सभी कैसे हैं, क्योंकि 20 साल पहले 25 साल पहले हम सभी 200 लोग इधर भाई लोग रहते थे, सभी एक एज के 20-25 साल के उम्र के थे सभी। तो सभी दादी कहती थी लड़के सभी कैसे हैं, ठीक है। तो दादी चंद्रमणि हमको शाम को क्लास में या सवेरे के क्लास में सुनाती थी, भाई दादी ने फोन करके पूछा सब कैसे हैं, मैंने बोला अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप सभी अच्छे हैं ना, ऐसा पूछती थी। तो दादी बोलती थी अच्छा हैं, अच्छे हैं बोल बोल के अच्छा बन जाएंगे। तो इसलिए मेरा हर संकल्प अच्छा, कोई बात। तो जैसे हमको कई बार टोंट मार देते हैं ना, कोई मोटे को देख के मोटा है बोल देते हैं, पतले को देख के पतला है बोल देते हैं, या कुछ हम करते हैं कोई टोंट मार देते हैं, कस देते हैं मजाक में। तो दादी जानकी देखा है आप सबने, दादी जानकी को, ठीक है, किसने नहीं देखा है, किसी ने है, कोई है जो नहीं देखा हो, अच्छा फोटो में है देख लीजिए। उनका सिर थोड़ा बड़ा है, राइट, उनके शरीर के हिसाब से आप देखेंगे उनका सिर थोड़ा सा बड़ा है। तो उस समय 38 उस समय जब वो मंडली में आए, बच्चे बच्चे ही थे ना सभी, तो दादी को हमेशा कहते तो तुम्हारा सिर तो बड़ा है। तो दादी एक बार बाबा के पास गई, बाबा मुझे ये सब चिढ़ाते हैं मेरा सिर बड़ा है करके। तो बाबा ने देखा, मुस्कुराए, कोई बात नहीं बच्ची, आगे जाके तुम्हारे सिर के आगे सब सिर झुकाएंगे। तो उनको फिट बैठ गया, कोई बात नहीं। तो हर कोई हमको देख के टोंट करता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और योग में महत्वपूर्ण बात, हम अपने आप को देखें मन में क्या विचार चल रहा है, मेरा मन क्या है। मैं तो सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, सोमान लेके मैं बैठ गया योग में, मैं अपनी बात ही करते जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन में क्या है, मन एक्सेप्ट कर रहा है जो सोमान मैंने लेके बैठा, तो उसको देखें और उसको समझाएं। इसलिए हमेशा दादी जानकी मन को फ्रेंड बनाओ बोलती थी, मन को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखो बोलती थी। तो मन में जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं योग में बैठा तो मेरा मन क्या कहता है, तुरंत पूछेगा तुम कहां के मास्टर सर्वशक्तिवान है भाई, इतने साल तो बोला नहीं तुमने, अभी कैसे आ गया, तो आप क्या समझाएंगे, अरे हटो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तुरंत बोलेगा पानी पीने जाने, अरे नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तुरंत दूसरा कहला गया, दीदी कहां गई, मेरे साथ वाली कहां गई, नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अनुभव करना है, राइट? लेकिन नहीं, उसको जवाब देना है हमको। हम कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कैसे हैं? हाँ, तो हम भगवान के बच्चे हैं, राइट? परमात्मा के संतान आत्मा है, तो मास्टर हो ही गया ना, नहीं हुआ? तो मन को हमको समझाना है, मैं आत्मा हूं, भगवान का संतान हूं, तो मास्टर हो ही गया ना, वो शक्तियां आई नहीं है, आएगी, लेकिन मास्टर तो हो गया ना। तो हर बात में, जैसे पानी की याद आ गया, नहीं आधा घंटे योग में बैठा हूं उसके बाद मैं पानी पीऊंगा, कोई बात याद आ गई, नहीं आधा घंटा योग के बाद मैं वो बात करूंगा। तो मन को समझाते समझाते उसको कन्विंस करना है, कुछ दिन के बाद वो समझ जाएगा मन, हम योग में बैठते हैं कोई भी काम ये नहीं करेंगे, तो मन मान लेगी। आगे जाके जब भी योग में बैठेंगे कोई भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प नहीं आएगा, तो आप ट्राई करना। इसलिए मन को देखो, मन को दमन नहीं बनाना है, दबाना नहीं है उसको, हम उसको सुनना है, ठीक है? दूसरी बात, ट्रैफिक कंट्रोल्स। कई बार हम साधारणतः में ट्रैफिक कंट्रोल बजता रहता है, हम काम करते रहते हैं, लेकिन बाबा ने पूरा मुरली ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर चलाया है, वो एक मिनट में कितनी ताकत मिलती है शरीर को या आत्मा को। और कुछ काम कर रहे हैं, अगर बाबा को कुछ टच कराना है तो हमारा लाइन एंगेज ही रहेगा, तो बाबा का कॉल कैसे आएगा, हमारा मोबाइल एंगेज ही रखा है, दूसरों का कॉल कैसे आएगा। मुरलियों में दिल्ली में मेले की बात आती है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में मेला लगा हुआ था उस समय, तो कुछ बात ऐसे हुई, तो जब भी दादियां बाहर जाते हैं तो बाबा के कमरा होके जाना है। अब कोई भी बड़ों को देख लेंगे, दादियों को देखेंगे, कभी भी क्लास में भी आएगी गुड मॉर्निंग बोल के आएगी, इधर से जाएगी दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, जैसे सवेरे ही आया बाबा के कमरे में गई, बहुत बातें ऐसा सुनाती थी, जैसे बाबा के कमरे में गई उनको कुछ प्रेरणा आया सुनाती थी, मैं आज बाबा के कमरे में गया ये बात करनी है हमको। तो ऐसे वो ट्रैफिक कंट्रोल्स हमको मदद करता है। मैं सुना रहा था दिल्ली में एक प्रोग्राम चलने वाला था, तो सब तैयारियां हो गई, संदेशी दादी थी या कोई थे, तो वो बाबा के कमरे में गई, सब बाबा को बोलने गई, हम सभी इस प्रोग्राम में जा रहे हैं आप भी आओ बाबा करके बोलने के लिए गई, तो तुरंत बाबा ने रस्सी खींच लिया, तो बाबा ने बुलाया, बोला बच्ची आप सब तो ले लिया है, सब चीजें ले लिया है, मैच बॉक्स तो लिया ही नहीं, अगर उधर दीपक जलाना है तो मैच बॉक्स किसको पूछेंगे। तो वापस आए, आने के बाद सच में वो मैच बॉक्स कोई नहीं लिया था, तो वो लेके गए। तो हर छोटी चीज भगवान हमको याद दिलाता है, तो कब, वो ट्रैफिक कंट्रोल्स में, हमारा मन शांत, एक मिनट के लिए शांत कर। हम उसी समय सोचते हैं चलो एक मिनट में ये पूरा कर देंगे, नहीं, उतना महत्वपूर्ण टाइम है। जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ प्रेरणा आ सकती है, बाबा कुछ टच करा सकता है। तो एक मिनट, उस एक मिनट में उतना डीप साइलेंस, मर गए हम, एक मिनट के लिए खत्म, शरीर छोड़ दिया, फिर शरीर में आए, ठीक है। तो ट्रैफिक कंट्रोल्स का ध्यान, तो ये प्रैक्टिस करते करते, इसलिए शरीर कब छूटेगा हमको तो पता नहीं है, कभी भी छूट सकते हैं, लेकिन बाबा की याद हो तो तुरंत हम आसानी से शरीर छोड़ दें। तो बार बार शरीर से बाहर आने का प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा बिंदु रूप है प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम आसानी से जा सकते हैं। लास्ट में एक बात मैं सुनाऊंगा, क्यों हमको आत्मा का प्रैक्टिस करना है। जो बाबा बोलता है सतयुग में गर्भ महल रहेगा, यहां गर्भ जेल। क्यों जेल है, कभी सोचा है आपने, क्यों आत्मा की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हर मुरली में बाबा कई बार कहता है प्रैक्टिस करना है, आत्मा हूं समझो, आत्मा हूं विश्वास रखो, क्यों हा? हाँ, संबंधों में फंसी हुई है, वो बात भी ठीक है। दूसरा, प्राप्ति आत्मा समझेंगे तभी होंगी, वो भी सही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तो हमारा कॉन्शियस तो इतना बड़ा है ना, राइट? हम जिंदगी भर इतना ही 5 फुट 6 फुट या 4 फुट के आदमी इतना ही रहेंगे ना, तो उतना छोटी सी चीज में समाना वो होता है जेल। इसमें ज्ञानामृत में बहुत पहले एक आर्टिकल छपा था, कोई भाई था शरीर छोड़ दिया था, क्रिश्चियन था, शरीर छोड़ दिया था, वो एक बहन के पास आया सवेरे सवेरे उनके घर में, बहुत लंबा कहानी है, लेकिन वो गर्भ में जा नहीं सकता था, उतना उसको क्या बोलते घुटन हो रहा था, इतने बड़े शरीर को इतने छोटे में समाना। बहुत बार उसने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों आत्मा का इतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं आत्मा हूं इतनी छोटी सी बिंदी, तो इतना बड़ा शरीर में समाना कितना इजी है, भले इतना सा ही रहता है गर्भ, इतना सा ही रहता है ना, तो छोटी सी आत्मा समझो तो आराम से रह सकता है, जो गर्भ महल बनता है। तो यहां ही हमको प्रैक्टिस करना है, क्यों माना वो तड़पन ना हो, गर्भ हमारे लिए जेल नहीं बने, तो आत्मा का प्रैक्टिस उतना आवश्यक है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत डीप है। इसलिए हम साधारण कर्मों में हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं सभी आसनों में कठिन आसन कौन सा है पता है, शीर्षासन। सभी आसनों में बहुत कठिन आसन है अनुशासन, डिसिप्लिन, क्योंकि हमारे जीवन को बनाता है वो। कई भाई लोग ऐसे हैं उनको देख के टाइम पता चल जाता है, एक भाई हमेशा टेलीफोन एक्सचेंज में जाता है, वो एक्यूरेट 9:02 पहले वो जाएगा, कितने सालों का, उसको रास्ते में देख लिया, हाँ 9:02 है, एक साधारण सी चीज, तो लोगों में उतना प्रेरणा। ऐसे हमारा साधारण था, तो सभी श्वासों में लंबा श्वास कौन सा है, जो बाबा हमेशा याद करता है मुरलियों में, ये होना चाहिए, कौन सा है, हाँ हाँ बोलिए, विश्वास। तो हर साधारण चीज हमको दिव्यता की ओर पहुंचा सकती है, जब मैं उसको साधारण ना समझूं, ठीक है। तो कुछ बातें आपको दिया, 2 दिन में ट्राई कीजिए, और भी गहन अनुभूतियां, और बैठक भी योगी का बैठक, जो बाबा हमेशा मुरली में दिलवाड़ा का देता है ना एग्जाम्पल, जाओ अपनी मूर्ति देख के आओ, तो मूर्तियां कैसी बैठी है, योग में कम से कम सीधा स्थिर एकदम आंख के खोल के, ठीक है।